Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, अपने बीते हुए कल की उदासी को और अपने आने वाले कल के भय को कभी भी अपने आज पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि जो आज है वो कल फिर कभी भी लौट कर नहीं आएगा। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधी शर्मा जी। ओम शांति।
ओम शांति।
वेलकम टू आवर शो।
थैंक यू वेरी मच, प्लेजर।
डॉक्टर साहब, अभी तक हमने 2-3 एपिसोड्स में जो बातें की, जो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने की हमारी कोशिश है, इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब तो हुए हैं, लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ कि एक रिश्ता जो क्रिएट होता है उसकी शुरुआत तो जब हम पैदा होते हैं तब से ही हो जाती है। जैसे एक छोटा बच्चा, उसका सबसे पहला रिश्ता जो क्रिएट होता है वो अपनी मम्मी के साथ होता है, तो क्या उसी लेवल से हमारे जो रिलेशनशिप की जो कड़ी है वो शुरू हो जाती है?
देखिए, एक्चुअली रिलेशनशिप की जो सचमुच कड़ी है वो बच्चे का गर्भ में आने से पहले ही शुरू हो जाती
है। ओह, ओके।
क्योंकि ज़्यादातर अगर आप देखें तो प्रेगनेंसीज प्लान्ड होती हैं, जिसका मतलब ये है कि माँ बाप सोचते हैं कि अब एक नई चीज़ को अपने घर में लेके आएंगे, और कुछ समय के बाद वो जो चीज़ है वो जीते जागती एक बच्चा पैदा हो जाता है। ना अगर मान लीजिए मन की मानसिक स्थिति माँ की अच्छी नहीं है और प्रेगनेंसी जल्दबाजी में हो जाती है, या मान लीजिए फादर की हालत ठीक नहीं है, वो ड्रग्स लेता है या काम में बहुत टेंशन में रहता है, या उनके आपस में संबंध अच्छे नहीं हैं, तो जिस अवस्था में माँ गर्भ धारण करेगी वो अवस्था अच्छी नहीं होगी।
ओके।
9 महीने में जबकि बच्चा गर्भ में रहता है तो उस समय में उसको सब कुछ माँ से मिलता है, खाना पीना भी, लेकिन माँ के इमोशंस भी। जिस तरह की इमोशनल स्थिति में हम होते हैं उससे हमारे शरीर के अंदर और मन के अंदर अलग अलग प्रकार के केमिकल्स, हार्मोन्स, उनका प्रवाह चलता है। वही केमिकल्स बच्चे के अंदर भी आते हैं, और इसीलिए ऐसा देखा गया है कि मान लीजिए माँ शराब का सेवन करती है तो जो बच्चा है उसके अंदर भी धीरे धीरे शराब के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा पाया गया है कि अगर माँ मान लीजिए शराब ले रही हैं तो जो बच्चा पैदा होगा उसमें कुछ फिजिकल विकार तो होंगे, जैसे कि उसका वेट ज़्यादा होगा, उसकी ग्रोथ पूरी नहीं होगा, हो सकता है कि वो जल्दी पैदा हो जाए, जिसको हम प्रीमेच्योर बेबीज कहते हैं, और कई बार पैदा होने के बिल्कुल बाद ही उसको इमोशनल डिस्ट्रेस शराब के प्रति हो जाता है। सो ये जो माँ के मन की स्थिति है, और मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ और घर में आसपास खूब हंगामा चल रहा है, माँ बाप की लड़ाई हो रही है, या उनके आपस में बहुत डिफरेंसेस हैं, या कई बार बच्चा ही अनवांटेड होता है, माँ जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करती, तो वहीं से एक खराब रिश्ते की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। और फिर बच्चा जिस प्रकार से पनपेगा, माँ उसे कितना प्यार देती है, सिर्फ लालन पोषण नहीं, खाना पीना नहीं, लेकिन कितना समय अपने पास रखती है, कितना समय उसके साथ लोरी में बिताती है, कितना समय उसकी देखभाल करने में रखती है, उसके पॉजिटिव इमोशंस क्या हैं, ये बच्चा महसूस कर पाता है गर्भ के अंदर भी, पैदा होने के बाद भी। तो वहीं से एक पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशनशिप की शुरुआत बच्चे में पड़ सकती है, और फिर धीरे 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 जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो जो घर का माहौल है, जिस प्रकार से लोग आपस में एक दूसरे की बात करते हैं, यू नो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिसमें मान लीजिए एक घर का माहौल बहुत ख़राब है और लोग एक दूसरे पे चिल्लाते हैं, ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, एक दूसरे को उल्टी सीधी बातें कहते हैं, तो ऐसा पाया जाता है कि कुछ हद तक बड़े होने के बाद बच्चों में उस प्रकार की आवाज़ों का भय या उस प्रकार के माहौल का भय बनना शुरू हो जाता है, और ये सब कॉन्शियस है। अभी उसने लैंग्वेज, उसे पता नहीं है कि क्या बोला जा रहा है, लेकिन वो जो टोन है, जो हाई आवाज़ है, उसी को वो पिक कर लेता है। तो उसकी शुरुआत हो सकता है कि परिवार के बारे में सोच अलग होगी बनस्पत के उस परिवार के, जहाँ पे कि प्लांट तरीके से बेबी हुआ, माँ को बहुत प्यार था बच्चे के लिए, उसने बच्चे के लिए और सब चीज़ों को छोड़ के उसके ऊपर समय बिताया, और फिर माँ बाप दोनों ने और घर के दूसरे लोगों ने बच्चों को, बच्चे को एक्सेप्ट किया, उससे प्यार से बातचीत हुई, उसकी ग्रोथ हुई, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली अभी क्या हो रहा है कि क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा आगे जाके बहुत कुछ करे, तो ABCD तो शुरू हो जाता है जल्दी, लेकिन जो प्यार की ABCD है वो नहीं पढ़ी जाती है। तो जो ज़रूरतें हैं वो आज के समय में बाहरी रूप से, चाहे वो उसको पढ़ाने की है, अच्छे स्कूल में डालने की है, कई बार बच्चे को शुरू से गेम्स सिखाने की या कुछ और हॉबीज सिखाने की तो शुरू हो जाती है, लेकिन जो मूल्य हैं, जो कोर वैल्यूज़ हैं, उनके बारे में बात अगर होनी शुरू हो जाए और उसका व्यक्त होना शुरू हो जाए, तो बचपन का वो जो समय है वो बहुत सशक्त होगा।
वाह डॉक्टर साहब, वैसे तो आजकल हम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक तरीके का जो कंपैरिजन जो होता है सिबलिंग्स के बीच में, ये भी काफ़ी हद तक बच्चों पर इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ बच्चे ज़रूरी नहीं है कि उतने ही इंटेलिजेंट हो जितने कि दूसरे होते हैं। कई बार भाई काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और बहन शायद, या फिर वाइस वर्सा, इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए कि वो अपने दोनों बच्चों को एक साथ लेके चले और जो कंपैरिजन जो होता है वो ना हो?
कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं बचपन में तो वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलेगा। ऐसा भी पाया जाता है कि जो हमारी इंटेलिजेंस, जिसको बोलते हम, कोई भी अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी 4-5% से ज़्यादा उसका इस्तेमाल नहीं करता। जो हमारी पोटेंशियल है वो कम से कम 20 गुना, मे बी मोर, ज़्यादा है उसके जितने की हम यूज़ करते हैं। तो किसी को ये कह देना कि वो बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं है, सबसे बड़ी गलती एक्चुअली समाज वाले यही करते हैं, क्योंकि उस समय में शायद किसी चीज़ में वो दूसरे से ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहा। हमारे समाज में एटलीस्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा जो रहा है जेंडर इनइक्वालिटी का,
करेक्ट,
जिसमें कि लड़कियां जो हैं उनको शुरू से ही एक अलग तरह के रोल के लिए देखा जाता है, और ये आज के समय में भी एक सच्चाई है।
वो तो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि हम कितना भी कोशिश करते हैं कि, वैसे तो आज हम देख ही रहे हैं कि कितनी चीज़ों में लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया है, कितने स्ट्रीम्स में ऐसा देखा गया है, लेकिन फिर भी आज भी अगर एक बेटी घर में पैदा होती है तो अलग फीलिंग्स आती है एज़ कम्पेयर टू अ ब्रदर, ऐसा क्यों?
देखिए वो बहुत सालों का एक रहा है, इसलिए शायद कि कभी सोचा जाता था कि उसकी शादी करनी होगी, उसमें पैसा खर्चा जाएगा, या कुछ हद तक उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा, ये सोचा जाता था कि वो वल्नरेबल हैं फिजिकली या सेक्सुअली और उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, या सिर्फ दबाने के लिए, एक जिसको मेल शोविनिज्म कहा जाता है, कि उनको दबाने के लिए ही मेल्स ने सोचा कि अगर उनको यही सोचा जाए कि साहब ये कुछ तरह के ही काम कर सकती हैं, उसी के लिए पैदा हुई हैं। बट ये एक सच्चाई फिर भी परिवारों में आज भी रहती है कि जहाँ उन्हें जितना रिसोर्सेज मिलने चाहिए, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे हेल्थ के लिए, चाहे चीज़ें सीखने के लिए, चाहे ग्रोथ के लिए, चाहे जितना उनको एक्सपोजर मिलना चाहते हैं चाहिए उसके लिए, वो नहीं हो पाता। तो वहीं से जब कंपैरिजन होने शुरू हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ख़ास तौर पे लड़कियों को ऐसा लगता है कि वो या तो कम है, या उनमें अंदर से इस तरह की भावनाएं होनी शुरू होती हैं कि उनको दबाया जा रहा है। सिबलिंग राइवलरी एक्चुअली हर केस में होती है।
ओके,
बिकॉज देखिए माँ बाप का प्यार है, अब एक ही दिन में वो डबल नहीं हो जाता। जैसे ही दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो उस समय में कुछ देर के लिए उनका ध्यान जो है वो जो नया बच्चा है उस पे जाता है, क्योंकि उसको थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है, समय की भी, रिसोर्सेज की भी, प्यार की भी। लेकिन ऐसे में अगर वो बड़े बच्चे को अपने साथ लेके चले कि वो भी केयर गिवर बन जाए, और अगर ख़ास तौर पे थोड़ा सा गैप ज़्यादा है तो उसको छोटे बच्चे की केयर के लिए अपने साथ लिया जा सकता है कि अच्छा तुम इसका हाथ पकड़ के बैठ जाओ, उसे इम्पोर्टेंस महसूस होगी। अगर ये कहा जाता है कि अच्छा मम्मी जा रही है कुछ काम करने, अभी तुम पीछे संभालो, या तुम बड़े हो तो तुम्हारा, क्योंकि जैसे मैं बड़ी हूँ मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, ये तुम बड़े हो तो तुम उसको ज़्यादा प्यार करो, तो किस भावना से उसको एक रोल दिया जाता है, उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। अगर ठीक तरीके से दी जाती है तो कई बार आप देखेंगे कि सिबलिंग राइवलरी तो खैर ख़त्म ही हो जाती है, लेकिन जो बड़ा है वो दूसरे छोटे बच्चे को ज़्यादा ध्यान करके, ज़्यादा प्रोटेक्ट करके, और वो चीज़ हमेशा पूरी ज़िंदगी चलती है। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि कई बार सिबलिंग राइवलरी, जहाँ पे कि खास तौर पे पेरेंट्स उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, पेरेंट्स ऑब्वियसली एक को दूसरे के ऊपर बढ़ावा देते हैं, या एक का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते और दूसरे को रखते हैं, और कई बार पहला अगर डॉटर है और दूसरा सन है तो सारे के सारे इम्पोर्टेंस उसे दी जाती है, तो वो चीज़ पूरी ज़िंदगी चल सकती है, क्योंकि उस तरह के जो नकारात्मक एक्सपीरियंसेस हैं, जब शुरू में कष्ट हुआ तो शायद छोटे थे कह नहीं पाए, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं आपस में जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ती जा सकती है। तो उसके लिए पेरेंट्स को दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हर बच्चा यूनिक है और हर बच्चा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने हिसाब से पनपेगा। अगर हम उसकी लिमिट बना देंगे तो हम उसकी सोच को भी लिमिटेड कर देंगे। दूसरा, कई बच्चे जो हैं वो शुरू में नहीं पनपते, बाद में पनप जाते हैं, तो हर किसी को उसका समय देना चाहिए। और तीसरा कि करीबन 10% बच्चों में ऐसा देखा गया है कि उन्हें कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती
हैं।
इट इंक्लूड्स मेंटल रिटार्डेशन, इट इंक्लूड्स व्हाट वी कॉल एज ADHD, अटेंशन हाइपरडेफिसिट डिसऑर्डर, जिसमें कि एक जगह बैठ नहीं पाते, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते और पेरेंट्स उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, स्कूल में भी नहीं एक जगह बैठ पाते तो इस वजह से उनको बार बार गालियाँ सुनने को मिलती हैं। लेकिन उनकी प्रॉब्लम कुछ और है, जब तक उसको नहीं देखा जाएगा तब तक वो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसी के साथ साथ कुछ बच्चों में इमोशनल डिसऑर्डर्स होते हैं, टेम्पर टेंट्रम एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि देखा गया है कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने या चिल्लाने लग जाते हैं, खासतौर पर पब्लिक प्लेसेस में, उन्हें कोई चीज़ चाहिए हो तो वो उस समय दूसरों के सामने
जिद
करके बैठ जाते हैं, कई बार बिल्कुल नीले हो जाते हैं, इतना रोते हैं। तो पेरेंट्स को नहीं समझ आता कि उसको संभालें कैसे, तो या तो उन पर उनका गुस्सा निकलता है और या वो जो भी चाहते हैं वो दे देते हैं। तो इन सिचुएशंस को अगर पहले जैसे भी ठीक करना है, अगर डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है वो भी कर लें, और उसके बाद ये समझ के कि वो उसके लिए सही ग्रोथ प्रोवाइड कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, लेकिन उसकी ग्रोथ अपने हिसाब से होनी है। और उसमें अगर बिना कंपैरिजन के करेंगे दोनों बच्चों को, तीनों बच्चों को जितने भी हैं घर में, उनको साथ में लेके चलेंगे, और पड़ोसी का बच्चा कितना आगे निकल गया या किसी और का भाई बहन का बच्चा कितना आगे निकल गया, उन कंपैरिजन्स को अगर कम रखेंगे तो हर किसी को अपनी ग्रोथ होने का मौका मिल पाएगा।
करेक्ट। पर डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपनी तरफ से 100% दे रहे होते हैं बच्चों को, हर तरह से उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, लेकिन कई बार उनकी जो ज़िद है वो ज़िद को भी इतना ज़्यादा बढ़ावा दे देते हैं कि शायद उनके लिए जो हानिकारक चीज़ें हैं वो भी दे देते हैं, क्योंकि वो ज़िद समझते हैं कि भाई ये चुप हो जाए, इतना इतना मुझे तंग ना करे। तो ये किस हद तक सही है, या फिर अगर गलत है तो इसे कैसे सुधारा जाए?
देखिए, जहाँ पे एक फैमिली में ज़्यादा लोग हैं ज़िद्दें वहाँ पे ज़्यादा पनपती।
अच्छा,
अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए पहला लड़का घर में हुआ तो वो बहुत नायाब चीज़ समझी जाती है, तो उसकी हर बात मान ली जाती है। तो मम्मी ने कहा नहीं, लेकिन ग्रैंड मदर ने कहा कि कोई बात नहीं, छोटा ही है, दे दो। या मम्मी ने कहा नहीं और पापा लेके आ गए, या पापा ने कहा नहीं और मम्मी ने उसको प्रोवाइड कर दिया, तो बच्चा भी समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में अगर कंपटीशन करवा दो तो मेरा काम निकल आएगा।
करेक्ट।
अच्छा, वो जानबूझ के नहीं करते, उस समय उनका पर्पस सिर्फ किसी चीज़ को जो उस समय उनके मन को अच्छी लगती है उसको प्राप्त करना। लेकिन उसमें ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम आज एग्जाम्पल दे रहे हैं ये बाद में बड़ी होती जाती, क्योंकि आज वो खिलौना है, कल वो शायद 12 साल की उम्र में गाड़ी चलाने का जिद हो सकती है, 16 साल की उम्र में कोई ऐसी चीज़ लेने की कोशिश हो सकती है, या कोई रिलेशनशिप हो सकती है जो कि मॉरली भी ठीक नहीं हो शायद और लीगली भी ठीक नहीं है, लेकिन उसका बीज जो था वो अर्ली चाइल्डहुड में पनपा। तो कोई भी चीज़ जो है वो छोटी नहीं होती है अगर वो गलत है, तो उसको उसी समय पे रोक देने की ज़रूरत है। शुरू शुरू में जब हम देखते हैं, जैसा आपने कहा कि बच्चों की ज़िद हो जाती है और सोचते हैं कि अरे बाकियों के सामने ड्रामा होगा चलो मान लेते हैं, या किसी के घर जा रहे हैं वहाँ पे कुछ ना हो तो चलो मान लेते हैं, आप कहीं जाने की जल्दी में हैं तो बच्चा उसी समय चिल्लाएगा, उसे पता है कि आप जाने की जल्दी में हाँ कर देंगे। लेकिन ये सब गेम्स हैं जिनको कि अवॉइड करना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और शुरू में कुछ बार अगर आप फॉर्मली ना कहते हैं लेकिन उस ना कहने के साथ प्यार पूरा देते हैं, कई बार हम ना कहते कहते और चीज़ें जो हैं जो कि बच्चे की ज़रूरत है, चाहे उसको थप्पड़ मार दिया या उससे बात नहीं की, तो वो सब चीज़ें जो हैं फिर वो बच्चे को पूरी रिजेक्शन लगती हैं, और उस रिजेक्शन को पूरा करने के लिए भी वो कोशिश करता है कि वो चीज़ पाए, आपका प्यार पाने की कोशिश कर रहा है किसी चीज़ के बहाने। तो अगर वो हम पूरा देते हैं, समय उसको पूरा देते हैं, तो फिर धीरे धीरे सीख जाते हैं। आज के समय में एक्चुअली एक और बहुत बड़ी, थोड़े से बड़े शहरों में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है कि स्कूल में अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं।
करेक्ट।
उनमें से कुछ बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स उन्हें कुछ चीज़ें दे सकते हैं, बाकियों के नहीं दे सकते, और उस फीलिंग के साथ कि मेरे बच्चे को कमी ना महसूस हो, वो कई बार पेरेंट्स होड़ में लग जाते हैं, और उस होड़ में क्योंकि दूसरे को ज़्यादा पॉकेट मनी मिलती है तो इस बच्चे को भी ज़्यादा दें, दूसरा बच्चा अगर गाड़ी में ड्रॉप होता है स्कूल तो चाहे वो कार को हायर कर लें लेकिन फिर भी उसके पास आए स्कूल ड्रॉप करने, ताकि उसे कम से कम वो ना महसूस हो। देखिए, ज़िंदगी में आगे जाने के बाद ये कि किसी के पास कम है किसी के पास ज़्यादा है वो हमेशा रहेगा
जी,
लेकिन आपका सम्मान इस चीज़ से नहीं डिपेंडेंट होना चाहिए कि आपके पास है क्या, इस चीज़ पे डिपेंडेंट होना चाहिए कि आप हैं क्या।
सो ट्रू।
तो अगर आप अपने अंदर सक्षम महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं और उन क्वालिटीज़ को उभारा जाता है, पेरेंट्स भी उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, तो बच्चा अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेगा, और जब कॉन्फिडेंट महसूस करेगा तो बाकी चीज़ों में, फिज़िकल चीज़ों में थोड़ी सी कमी अगर होगी भी तो वो आसानी से संभाल लेता। पेरेंट्स कई बार इस चीज़ के बारे में रिलेशनशिप्स में बात करने से डरते हैं कि बच्चे को बुरा ना लगे,
बिल्कुल,
बच्चा कहीं ये ना समझे कि उसमें कुछ या उसके परिवार में कुछ कमियां हैं। लेकिन सच्चाई को सही रूप से बता पाना, अपनी लिमिटेशंस को समझा पाना, लेकिन उसके साथ जो संबंध है, जो प्यार है, उस रिश्ते को ना कम करना, अगर वो होता है तो ज़्यादातर बच्चे समझ पाते हैं।
बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब, अगर हम बच्चों के अंदर में इस चीज़ को रियलाइज़ कर लें कि उनकी ज़िद को सदा मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे प्यार में परिवर्तन करके अगर उन्हें प्यार से समझाएं तो वो उस बात को ज़रूर समझ जाएंगे
जी।
डॉक्टर साहब, कुछ ऑडियंस क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम अभी लेना चाहते हैं, जिनके जवाब हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
जरूर।
आज घर घर में हम देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जैसे बच्चे घरों से सुबह निकलते हैं तो रात देर तक आते हैं, तो घर में माँ बाप हैं, बच्चे हैं, तो उनको हम ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं, तो संबंधों में जो प्यार है वो प्यार बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है।
डॉक्टर साहब, हमारी ऑडियंस का इस तरह से क्वेश्चन है कि वो ये कहना चाह रहे कि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं जितना टाइम वो एक्सपेक्ट करते हैं, जो एक बच्चे के लालन पोषण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ उनके इमोशनल जो एक अपब्रिंगिंग होता है उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो ना देने के कारण बच्चे अपने आप को लेफ्ट आउट महसूस करते हैं। ऐसे में क्या किया जाए?
देखिए, ये आज के जीवन की एक सच्चाई बनती जा रही है, ख़ास तौर पे बड़े शहरों में, जहाँ पे कि जितना समय लोग ऑफिसेज में बिताते हैं वो बढ़ रहा है, और उसके बाद घर से आने जाने का समय भी बढ़ रहा है, और लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ रही हैं। जब घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो ये प्लानिंग होनी शुरू हो जाती है कि इसकी हायर एजुकेशन के लिए कितना पैसा चाहिए, और वो किस तरह की होनी चाहिए। और कई बार पेरेंट्स उस चीज़ को ये जस्टिफाई करते हैं कि अगर मैं इतना काम नहीं करूँगा या करूँगी तो आगे के लिए वो सब क्या होगा। लेकिन उस आगे 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 के चक्कर में हम जो अभी है, जो कि फिर नहीं वापस आने वाला, वो भूल जाते हैं। तो एक बैलेंस को होने की ज़रूरत है। उस बैलेंस में हम ये समझ पा रहे हैं अभी साइंटिफिकली ऑल्सो कि पहले जो 5 वर्ष हैं बच्चे के लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसी दौरान में बच्चे के ब्रेन की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है।
ओके।
उसी दौरान में लॉन्ग टर्म पर्सनालिटी के पैटर्न्स बनते हैं, और उसी दौरान में समाज में रह के, जिसको हम सोशलाइजेशन बोलते हैं, सही ढंग से जीने की कला क्या है वो बच्चे में डेवलप होती है। उसी क्रूशियल पीरियड पर अगर हम उसकी ज़िंदगी से मिसिंग हैं तो वो सब काम बाय डिफ़ॉल्ट होगा या बाकी लोगों से वो सीखेगा। तो उस बैलेंस में जितना भी काम चल रहा है वो ठीक है, लेकिन अगर पेरेंट्स समय निकाल पाएँ इफ पॉसिबल, और अगर ना हो तो क्वालिटी समय निकाल पाएँ। कई बार पेरेंट्स पहुंच भी जाते हैं लेकिन उसके बाद भी सेल फोन पे या अपने कंप्यूटर पे या बाकियों से बातचीत करने में लगे रहते हैं। उसको क्या अच्छे से अच्छा भोजन देना है उसके बारे में इतना जानने और वो बनाने में इतना लगे रहते हैं कि जो एक रिश्ता है उसके साथ वो रिश्ते को भूल जाते हैं। सो दैट शुड टेक प्रायोरिटी, दैट्स वन। सेकंड, कि कई चीज़ें बच्चे समझाने से नहीं सीखते, दूसरे को देख के सीखते हैं। अगर हम उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान दें लेकिन वो ना करें तो बच्चा जो हम कर रहे हैं वो सीखेगा। इट इज़ कॉल्ड रोल मॉडलिंग। तो रोल मॉडलिंग में बच्चा आपको जो करते देखता है, अगर किसी प्रेशर सिचुएशन में आपको गुस्से के साथ डील करते देखता है और उसे बाद में आप कहें कि शांत रहो, वो शांत नहीं रहेगा। उसने ये सीखा है कि प्रेशर सिचुएशन में मुझे गुस्से के साथ डील करना है। तो अगर ये चीज़ें माँ बाप एक प्लान्ड तरीके से, देखिए अच्छा प्रोजेक्ट हम कुछ करने जाते हैं तो उससे पहले ये सोचते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या करना है। लेकिन जो एक प्रोजेक्ट है बेबी, जो कि पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलने वाला है, और वो अगर प्रोजेक्ट तकलीफ में आएगा तो आपको भी तकलीफ होगी। तो उसके लिए समय, उसके लिए इन्फॉर्मेशन, और उसके लिए आपस में मिलजुल के बोथ पेरेंट्स अगर प्लान कर सके तो हो सकता है। आई वुड ऑल्सो से कि इन्होंने कहा कि बच्चों को समय नहीं मिलता, बच्चों को बाय डिफ़ॉल्ट बाकी चीज़ें हम सिखा देते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें प्यार से आकर्षित करें, उनकी बात सुने, सिर्फ बोले नहीं, सिर्फ ये ना कहें कि तुमने ये करना है, लेकिन वो क्या करना चाहता है उसके बारे में देखें, तो बच्चा स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होगा। उसका नेचुरल बॉन्ड तो है ही फैमिली के साथ। हम कहीं ना कहीं उस बॉन्ड को जब वीकन कर देते हैं तो वो बाहर जाना शुरू हो जाता है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो हमें उसे समझाने के बजाय अगर हम खुद भी एज अ रोल मॉडल उस चीज़ को फॉलो करने लगे तो हमें देखकर बच्चे भी फॉलो करने लगेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो।
थैंक यू, मोस्ट वेलकम।
दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? एक छोटे से बच्चे का जब आगमन होता है इस दुनिया में, तभी से ही उसके रिश्तों की शुरुआत हो जाती है। तब से एक माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर आ जाती है कि किस तरह से वो अपने बच्चे का लालन पोषण कर रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें कितना समय दे रहे हैं और उनकी इमोशनली उन्हें कितना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं ताकि वो बड़े होकर पूरी दुनिया का सामना कर सके। तो पेरेंट्स को अपने अंदर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है और ख़ुद एज अ रोल मॉडल उन बच्चों के लिए बनने की ज़रूरत है, ताकि उनको देखकर उनके बच्चे भी सही पद चिन्हों पर चले। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।